शाम का वक्त, रावत मेंशन। अमर अपने कमरे में मौजूद बालकनी में बैठा था। उसकी आंखें अब भी लाल थीं, जैसे आज वो बहुत रोया हो। वो बस सामने खाली गार्डन को देख रहा था, जिसमें फिलहाल एक माली पौधों को पानी दे रहा था। अचानक ही अमर को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो जल्दी से चौंकते हुए नजरें घुमाकर देखता है तो वहां छोटी सी स्माइल लिए त्रिशा खड़ी थी। त्रिशा के हाथ में एक कॉफी का मग था। त्रिशा अमर के बगल में बैठकर वो कॉफी कप उसे थमाते हुए बोली, जब अपनों से धोखा मिलता है तब कुछ ऐसा ही हाल होता है। आप परेशान मत होइए, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप उसे धोखेबाज जानवी को भूल जाएंगे। अमर ने वो कॉफी कप पकड़ते हुए हल्के गुस्से में कहा, मैं आज भी उसे कभी धोखेबाज नहीं मानूंगा, तो तुम उसे धोखेबाज बोलना बंद कर दो। बीवी है वो मेरी, हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है। मेरा जब मन करेगा मैं तब उसे वापस ले आऊंगा। ये सुनकर त्रिशा की मुठ्ठियां गुस्से में कस गईं, पर उसके चेहरे के भाव नहीं बदले थे। उसने वैसे ही झूठी स्माइल करते हुए कहा, ये तो है, आप जबरदस्ती जानवी को अपने पास रख सकते हैं, या यूं कहें कि अपने हक से रख सकते हैं। बस जानवी कभी दिल से आपके पास नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो तो अद्वैत से प्यार करती है, और करे भी क्यों ना। अद्वैत आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है, फिलहाल पॉलिटिशियन ज्यादा कमाते हैं बिजनेसमैन लोगों से। अमर ने गुस्से में कहा, अगर तुम फिलहाल सिर्फ जानवी की बुराइयां करने के लिए यहां आई हो तो तुम वापस जा सकती हो, मुझे ये सब सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। त्रिशा ने अपनी आंखों में पानी लाते हुए धीरे से कहा, नहीं, मैं तो खुद अपना दर्द आपको बताने आई हूं। क्या है ना, दर्द बांटने से कम होता है। आप भी अपने दिल का हाल मुझे बता देंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मेरा और समर्थ का भी आज तक कोई रिश्ता नहीं बन पाया है। वो बस एक रात गलती से हम दोनों करीब आ गए थे, और अब मुझे उनके साथ रहकर भी ऐसा लगता है कि मैं अकेली ही हूं। तो उस अकेलेपन वाले दर्द को मैं समझ सकती हूं जो आप आज पूरे दिन से महसूस कर रहे हैं। खाली कमरा काटने को दौड़ रहा होगा, बार बार जानवी की आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी। त्रिशा की ये बात सुनकर अमर ने धीरे से कहा, हां, मुझे एक खाली कमरा काटने को दौड़ रहा है। मुझे जानवी की बहुत याद आ रही है। कभी उसकी पायलों की आवाज सुन रहा हूं, तो कभी उसके कंगनों की, जैसे वो मेरे आसपास ही है। वो नहीं तो बस उसका एहसास मेरे आसपास है, और मैं तो अभी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि मेरी जानवी मुझे धोखा दे सकती है। मुझे जल्द से जल्द उससे मिलना होगा। त्रिशा कुछ देर और अमर के पास बैठकर उसके दिल का हाल पूछती रही। अमर को अब त्रिशा की बातें बुरी नहीं लग रही थीं, बल्कि काफी ज्यादा रिलेटेबल लग रही थीं, और त्रिशा को लग भी रहा था कि वो अपने इस मैनिपुलेटिव गेम में कामयाब हो रही है। करीब एक घंटे बाद त्रिशा उठकर वहां से चली गई और अमर भी वहां से उठकर बाथरूम में चला गया, क्योंकि जानवी के बारे में सोचकर उसके पूरे शरीर में जैसे दर्द की आग लग गई थी, जैसे ठंडा करने के लिए वो अब कोल्ड शार लेने वाला था। वहीं दूसरी तरफ शेखर हवेली का गार्डन एरिया। जानवी शांत सी बेंच पर बैठी थी। उसने व्हाइट कलर की फ्रॉक पहन रखी थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी। वो उसमें बहुत प्यारी लग रही थी। अद्वैत उससे कुछ दूरी पर रखी दूसरी बेंच पर बैठा उसे निहार रहा था। जानवी के उठते बालों को देखकर उसका मन कर रहा था कि वो उसके पास जाकर उसके बालों को अपने हाथों में उलझाए, पर अफसोस उसमें इतने गट्स नहीं थे कि वो जानवी के करीब जा सके, इसीलिए वो बस उसे दूर से ही देखता रहा जब तक जानवी ने मुड़कर उसे नहीं देखा। जानवी उसकी आंखों की तपिश खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम क्यों मुझे ऐसे घूर रहे हो? प्लीज, मुझे थोड़ी देर की शांति चाहिए, जाओ यहां से। उसके कहने के साथ ही अद्वैत अपनी बेंच से उठा और उसके पास आते हुए बोला, ऐसे घबरा क्यों रही हो, और अब रोने मत लग जाना, बस दूर से ही तो देख रहा था। चलो मैं जाता हूं, परेशान मत हो। इतना बोलकर उसने गहरी सांस ली और आखिरी बार जानवी को देखकर वहां से जाने लगा। जाते वक्त उसने गार्डन की बाउंड्री पर खड़े बॉडीगार्ड को जानवी का खास ख्याल रखने के लिए वार्निंग दी और खुद हवेली के अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद अद्वैत तुरंत ही उस कमरे में गया जिसकी खिड़की गार्डन की तरफ थी। वो उस खिड़की पर आकर खड़े होते हुए जानवी को एक नजर देखकर बोला, महबूबा, अभी ये नजरें तुमसे हटने का नाम नहीं ले रही हैं। इसमें मेरी गलती नहीं है, आई एम सॉरी। वहीं जानवी हो, जो अब आंखें बंद करे गार्डन में चल रही ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। उसे जब वापस लगा कि कोई उसे घूर रहा है, उसने चारों तरफ नजरें घुमा कर देखी, और उसने जैसे ही उसे खिड़की की तरफ देखा तो वहां बस उसे हिलते हुए पर्दे नजर आए। अद्वैत अब कमरे की दीवार से लगा आंखें बंद किए जानवी के फेस रिएक्शन अज्यूम कर रहा था कि इस वक्त जानवी गुस्से में कैसी लग रही होगी। जानवी ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा, तुम कभी नहीं सुधर सकते हो। जानवी का हमेशा खिला रहने वाला चेहरा अब मुरझाकर सफेद पड़ चुका था। उसके होठों पर पपड़ी आ गई थी। उसने कोई मेकअप नहीं किया था, शायद आज तो मॉइस्चराइजर तक नहीं लगाया था। उसे बस अमर की याद आ रही थी। उसने अपनी आंखों में आई नमी को पोंछते हुए धीरे से कहा, पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। सच कहते हैं लोग, प्यार में जितना दर्द है उतना कहीं नहीं है। इतना बुरा तो मुझे तब भी नहीं लगा था जब बड़े पापा और ताई जी ने मुझ पर हाथ उठाया था, ना ही तब लगा था जब त्रिशा दी ने मुझे बुरा भला कहा था। ये दर्द तो उन सबसे ऊपर है और इससे मैं उभर भी नहीं पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कोई मेरा गला घोट रहा है, पर मुझे मौत भी नहीं आ पा रही है।